ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में स्वच्छता अभियान को प्रभावी और जन सहभागिता आधारित बनाने के लिए सभी विभागों को ठोस कार्य योजना तैयार कर समयबद्ध कार्यान्वयन के निर्देश दिए। दिल्ली नगर निगम मुख्यालय में आज एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन किया गया। महापौर राजा इकबाल सिंह ने कहा, एक साथ चुनाव कराने से चुनावी प्रक्रिया में सुधार और पारदर्शिता आएगी। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्कर गिरोह का पर्दाफाश कर 4.5 किलोग्राम से अधिक का मादक पदार्थ जब्त किया। 26वें करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में न्यू अशोक नगर नमो भारत स्टेशन पर करगिल विजय दिवस स्मारक जोन का उद्घाटन किया गया और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज पीतमपुरा स्थित दिल्ली हाट में तीज महोत्सव का उद्घाटन किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में स्वच्छता अभियान को लेकर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने राजधानी में स्वच्छता अभियान को प्रभावी और जन सहभागिता आधारित बनाने के लिए सभी विभागों को ठोस कार्य योजना तैयार कर समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस बैठक में शहरी विकास मंत्री आशीष सूद, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड और सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के बाद मंत्री आशीष सूद ने कहा कि 1 अगस्त से 30 अगस्त तक दिल्ली में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा।
1 अगस्त से 30 अगस्त दिल्ली में विशेष स्वच्छता अभियान चलेगा, जिसमें पहले 2-3 दिन में हर सरकारी दफ्तर में उस दफ्तर के प्रांगण की सफाई की जाएगी। हर बड़ा अधिकारी छोटा अधिकारी हर स्कूल में हर कॉलेज में हर यूनिवर्सिटी में सफाई की जाएगी। उसके साथ साथ ईच वन क्लीन वन अभियान भी इसी दौरान चलाया जाएगा, जहां हर स्कूल को, चाहे वो पब्लिक हो या सरकारी हो, हर यूनिवर्सिटी को, हर प्राइमरी स्कूल को एक जगह एडॉप्ट करनी पड़ेगी जिसे साफ करना पड़ेगा।
शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने आज ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित प्रमुख मुद्दों की समीक्षा को लेकर दिल्ली नगर निगम आयुक्त और अधिकारियों के साथ बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस बैठक में एकीकृत और सहयोगात्मक प्रयासों के महत्व पर बल दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार एक स्वच्छ, सतत और कचरा मुक्त राजधानी के बनाने के लिए नगर निगम को पूर्ण सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने कार्यकाल के 4078 दिन पूरे कर लिए हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के लगातार कार्यकाल 4077 दिनों तक प्रधानमंत्री रहने के कीर्तिमान को पीछे छोड़ दिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि देशवासियों के विश्वास, समर्थन, लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक है। उन्होंने 26 मई 2014 को देश की बागडोर संभाली थी और तब से अब तक लगातार देश की सेवा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के पूर्वी दिल्ली परिसर में आयोजित एक राष्ट्र एक चुनाव कार्यशाला में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1952 में चुनाव का खर्च सिर्फ 10 करोड़ था और वर्ष 2014 में सरकार ने लोकसभा चुनाव पर 3,800 करोड़ खर्च किए और 2019 में ये आंकड़ा बढ़कर 60,000 करोड़ हो गया है। उन्होंने बताया कि पिछले लोकसभा चुनाव में ये खर्च बढ़कर 1,35,000 करोड़ तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह प्रत्येक 5 वर्ष में चुनावी खर्च में तेजी से वृद्धि हो रही है और ये पैसा नागरिकों की मेहनत की कमाई से आता है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इसका इस्तेमाल जनता के विकास पर होना चाहिए, न कि चुनाव पर।
अपनी जेब का पैसा है, जनता की गाढ़े खून पसीने की कमाई का पैसा है, तो ये हम सबका कंसर्न है कि वो पैसा सही जगह लगना चाहिए, देश के विकास में लगना चाहिए, जनता के हित में लगना चाहिए, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगना चाहिए। और इसे दुर्भाग्य कहूं या क्या कहूं कि देश की आजादी के 75 साल बाद भी
दिल्ली नगर निगम मुख्यालय में आज एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली के विभिन्न विद्यालयों और दिल्ली विश्वविद्यालय के लगभग 2,040 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया तथा इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में महापौर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव का आशय है कि देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं, जिसके कई लाभ हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले इससे चुनावी प्रक्रिया में सुधार और पारदर्शिता आएगी, जिससे निर्वाचन आयोग अपनी भूमिका अधिक प्रभावी ढंग से निभा सकेगा। दूसरा, इससे शासन में स्थिरता और नीतियों के क्रियान्वयन में गति आएगी। तीसरा, इससे चुनाव पर होने वाले व्यय में उल्लेखनीय कमी आएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति और अस्पतालों के उन्नयन की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राजधानी के सभी अस्पतालों को अपग्रेड करने और वहां बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि जल्द ही दिल्ली के लोगों को अस्पतालों में विशेष स्वास्थ्य सेवाएं मिलना शुरू हो जाएंगी। दिल्ली सरकार अस्पतालों में जल्द ही बेड बढ़ाने की प्रक्रिया भी शुरू करेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि तय समय पर अस्पतालों का निर्माण कार्य पूरा हो जाए। मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए कि जिन आईसीयू अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी आधारित अस्पतालों में बदलना है, वहां सभी संभावित सुविधाओं को लेकर लगातार निगरानी भी की जाए। स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि जन औषधि केंद्र और जन औषधि मंदिर से राजधानी के लोगों पर दवाओं का बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि दिल्लीवासियों को सर्वोच्च और बेहतर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिले।
दिल्ली की जनता के ऊपर एक बोझ हमेशा दवाई के नाम पे दिल्ली की जनता के ऊपर पड़ता था, वो काफी कम होगा क्योंकि 50-70% दवाई सस्ती मिलेगी, अच्छी दवाई मिलेगी, गुणवत्ता वाली दवाई मिलेगी। तो जन औषधि केंद्र खोलने का लाभ 25 स्थानों पर हमने खोला है, लाभ स्वाभाविक दिल्ली की जनता को मिलेगा।
वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज नई दिल्ली के वायुसेना स्टेशन से शौर्य भारत का रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली का उद्देश्य ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का स्मरण और सशस्त्र बलों की वीरता का सम्मान करना है। एक रिपोर्ट।
ये रैली प्रोग्रेस हार्मनी डेवलपमेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा वायुसेना के सहयोग से राष्ट्र का मान शौर्य के साथ पर्यावरण संरक्षण की भावना को जागृत करने के लिए आयोजित की जा रही है। ये रैली वायुसेना स्टेशन अंबाला होते हुए वायुसेना स्टेशन आदमपुर पहुंचेगी और रविवार को समाप्त होगी। ये रैली महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में भी जाएगी और युवाओं से संवाद करेगी। साहसिक कार्य निदेशालय के तत्वावधान में आयोजित इस रैली में तीनों सेनाओं, भारतीय तटरक्षक बल, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा राष्ट्रीय कैडेट कोर के कुल 112 प्रतिभागी शामिल हैं। ये रैली लगभग 800 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बताया है कि इस गिरोह का मुख्य आरोपी, जो कि एक नाइजीरियाई नागरिक है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया है कि महाद्वीपों में फैला यह गिरोह एक बेहद संगठित ढांचे के साथ काम कर रहा था, जो भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों का इस्तेमाल करके मादक पदार्थ की तस्करी करता था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तस्करों के पास से 4.5 किलोग्राम से अधिक का मादक पदार्थ जब्त किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 100 करोड़ रुपए है।
पुलिस के अनुसार इस मामले में 2 किलो 700 ग्राम से अधिक कोकीन, 1 किलोग्राम से अधिक एमडीएमए और 1 किलोग्राम से अधिक गांजा बरामद किया गया है। इस अंतर्राष्ट्रीय गिरोह ने भारतीय शहरों में मादक पदार्थ के लिए फूड डिलीवरी ऐप जैसी प्रणाली स्थापित की थी। इस गिरोह की मौजूदगी मलेशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान और ब्रिटेन सहित कई देशों में है। इस संबंध में पत्रकारों के साथ बातचीत में दिल्ली पुलिस अपर उपायुक्त मंगेश कश्यप ने बताया कि आरोपियों के पास से एक होंडा सिटी गाड़ी और 2 लाख रुपए से अधिक की नकदी बरामद की गई है।
हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी क्राइम ब्रांच की टीम को कि एमडीएमए जो है वो इंडिया से बाहर भेजी जा रही है, तो उसमें कोरियर कंपनी के थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है और उसमें जब हमें पता लगा कि ऐसा कुछ है तो उसमें हमने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करी हमारे टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू इंस्पेक्टर अरविंद की टीम ने, उसमें फिर हमें एक नाइजीरियन नेशनल मिला जहां पर हमें और कोकेन बरामद हुई और एमडीएमए बरामद हुई। कोकेन की क्वांटिटी उस टाइम पे थी 2 किलो, आज की डेट में हमने टोटल 3 किलो के आसपास कोकेन बरामद कर लिए। 1 किलो से ज्यादा हमारे पास एमडीएमए मिली है, 1 किलो के ऊपर लीटर गांजा है, एक होंडा सिटी गाड़ी है, 2 लाख रुपए से ऊपर कैश मिला है।
पुलिस ने बताया कि इस मामले में 5 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से फर्जी पहचान पत्र, पासपोर्ट, मोबाइल फोन और नोटबुक जब्त की गई है, जिनमें मादक पदार्थ की बिक्री का लेखा जोखा है। प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
दिल्ली पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बताया कि ये गिरोह सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम के जरिए लोगों के साथ ठगी करता था। पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गिरोह ने पीड़ित से 17 लाख से अधिक रुपए की धोखाधड़ी की। पुलिस की जांच में यह भी पाया गया कि आरोपियों ने पीड़ित के नाम पर 2 अलग अलग बैंकों से अवैध रूप से 8 लाख रुपए का व्यक्तिगत ऋण भी प्राप्त किया। दिल्ली पुलिस ने 2 बांग्लादेशी नागरिकों को जहांगीरपुरी क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी ट्रांसजेंडर हैं और दिन में भीख मांगने तथा रात के समय आपराधिक गतिविधियों में लिप्त थे। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी कबाड़ बीनने और छोटी मोटी चोरी की घटनाओं में भी शामिल थे। दिल्ली और मेरठ के बीच चलने वाली नमो भारत ट्रेन रविवार को सुबह 6 बजे से शुरू होगी। ये फैसला उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के मद्देनजर लिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने कहा कि न्यू अशोकनगर से मेरठ साउथ के बीच ये सेवाएं रात 10 बजे तक ही उपलब्ध रहेंगी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उपराज्यपाल को दिल्ली विधानसभा को राष्ट्रीय स्तर की विरासत और सांस्कृतिक केंद्र में बदलने की अपने दृष्टिकोण की जानकारी दी। इस दौरान उपराज्यपाल ने इस पहल की सराहना की और आश्वासन दिया कि सभी संबंधित विभागों की ओर से पूरा सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दिशा में कार्य तेज किया जाएगा और जल्द ही एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई जाएगी ताकि इस योजना को जमीन पर उतारा जा सके। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज पीतमपुरा स्थित दिल्ली हाट में तीज महोत्सव का उद्घाटन किया। इस महोत्सव का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण, सांस्कृतिक समृद्धि और सामुदायिक समरसता को बढ़ावा देना है। इस महोत्सव में 100 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं, जिन पर पारंपरिक हस्तशिल्प, हथकरघा और व्यंजनों की विविधता का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इस आयोजन में महिला सांसदों की सहभागिता को लेकर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि 3 दिवसीय इस आयोजन में महिलाओं और युवतियों के लिए मेहंदी डिजाइन, बिंदी सजावट और रंगोली जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं।
बहुत रौनक है, खूब अच्छे अच्छे स्टॉल लगे हैं, ढेर सारी चाट पकौड़ी है और बहुत बढ़िया म्यूजिक का प्रोग्राम भी है। और 3 दिन का है भाई, 25, 26 और 27, तीनों दिन सुबह 11 बजे से रात को 9 बजे तक ये कार्यक्रम चलने वाला है, तो आप लोग बड़ा इंजॉय इसे कर सकती हैं। तो आप सभी मेरे साथियों को, मेरी बहनों को, मेरी सखियों को तीज के त्यौहार की बहुत ढेर सारी बधाई।
26वें करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने आज सशस्त्र बलों के करगिल वीरों को सम्मानित किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में NCRTC के प्रबंध निदेशक शलभ गोयल ने आज न्यू अशोकनगर नमो भारत स्टेशन पर करगिल विजय दिवस स्मारक जोन का उद्घाटन भी किया। राजधानी दिल्ली में आज दिन भर धूप देखने को मिली, जिसके कारण लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में स्वच्छता अभियान को प्रभावी और जन सहभागिता आधारित बनाने के लिए सभी विभागों को ठोस कार्य योजना तैयार कर समयबद्ध कार्यान्वयन के निर्देश दिए। दिल्ली नगर निगम मुख्यालय में आज एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन किया गया। महापौर राजा इकबाल सिंह ने कहा, एक साथ चुनाव कराने से चुनावी प्रक्रिया में सुधार और पारदर्शिता आएगी। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्कर गिरोह का पर्दाफाश कर 4.5 किलोग्राम से अधिक का मादक पदार्थ जब्त किया। 26वें करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में न्यू अशोकनगर नमो भारत स्टेशन पर करगिल विजय दिवस स्मारक जोन का उद्घाटन किया गया और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज पीतमपुरा स्थित दिल्ली हाट में तीज महोत्सव का उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।